का था, रूह वही रूप नया।
खूनी खेल कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि राज और रिया के साथ बाकी के चार लोग भी रियलिटी शो में 25-25 लाख रुपए पाने के लालच में एक आइलैंड पर पहुंचे। इस रियलिटी शो का स्पॉन्सरर एक शेख था, लेकिन क्या ये रियलिटी शो वाकई में रियलिटी शो है या इस रियलिटी शो के पीछे की रियलिटी कुछ और है, जानने के लिए सुनिए खूनी खेल कहानी का ये भाग। ये सब जब अपने कॉटेज में आए तो उनके माथे पर बल पड़े हुए थे। अब्दुल बोला, राज भाई, मुझे इन लोगों का इरादा कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा है। तारा बोली, हां भाऊ, वो चपटी नाक वाला तो ऐसा देख रहा था जैसे मेरे को कच्चा खा जाएगा। मेरे को बहुत डर लग रहा है भाई। राज और रिया और दूसरे लोग भी डरे हुए थे, क्या पता कौन सा खेल खेला जाएगा। लेकिन अब हो भी क्या सकता था। रात को सबने देखा कि कॉटेज के आसपास सुरक्षा रक्षक खड़े थे और खूंखार रॉटवाइलर कुत्ते भी आसपास बंधे दिखाई दे रहे थे। ये लोग किसी भारी षड्यंत्र में फंस चुके थे। रात को किसी को बराबर नींद नहीं आई। वो छोटे से खटके पर भी उठकर बैठ जाते थे। रिया और तारा एक ही कमरे में सोई थी। उन लोगों के हृदय में किसी अनहोनी का भय सता रहा था। दूसरे दिन दोपहर को लंच के बाद सबकी फिर शेख और दूसरे मेहमानों के सामने पेशी हुई। शेख ने सभी का स्वागत किया और बोला, हाजरीन, अब वक्त आ गया है जब हम खेल का आगाज करेगा। उसके पहले मैं आप लोगों को अपना कलेक्शन दिखाना चाहूंगा। चलिए। ऐसा कहकर शेख दूसरी तरफ चल पड़ा। उसके दूसरे मेहमान और ये छहों बंदे उसके पीछे पीछे थे। वे सब एक बड़े से कमरे में पहुंचे। वहां दीवारों में बड़े बड़े शोकेस बने हुए थे जिन पर शनील के पर्दे चढ़े थे। शेख उन्हें अपने साथ पहले शोकेस के पास ले गया और उसने अपनी जेब से एक रिमोट कंट्रोल निकालकर उसका बटन दबाया तो शोकेस का पर्दा एक और खिसक गया। भीतर एक बहुत बड़े बब्बर शेर का भूसा भरा हुआ पुतला खड़ा था। वो शेर बिल्कुल जीवित मालूम पड़ रहा था। रिया उस शेर को देखकर भयभीत हो उठी तो शेख ठहाका लगाकर हंसकर बोला, डरिए मत मोहतरमा, ये जिंदा नहीं है। इसे मेरे दोस्त मिखाइल ने 2 साल पहले ही शूट किया था और अगर ये जिंदा होता भी तो बुलेट प्रूफ शीशे के इस कैद खाने से नहीं निकल सकता। दरअसल हम सभी लोगों को शिकार का बेहद शौक है। हम हमेशा शिकार की तलाश में रहते हैं। ये जो आप यहाँ आए हैं, ये जगह एक टापू है जो हर तरफ पानी से घिरी हुई है और ये मेरी मिल्कियत है। यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। ये लगभग 100 वर्ग किलोमीटर का एक छोटा सा जजीरा है जो समंदर की छाती चीर कर बाहर निकला हुआ है। मैंने सारी दुनिया भर के हिंसक जानवर लाकर यहाँ आबाद किए हैं और हम सारे दोस्त वक्त वक्त पर उनका शिकार करते रहते हैं। इतना कहकर शेख आगे बढ़ गया और उसने दूसरे शोकेस पर से पर्दा खोला। उसमें बहुत बड़ा हाथी था। उसके नुकीले दांत तलवार की तरह काफी आगे निकले थे। इसे गिलबर्ट ने मारा था, शेख हंसता हुआ बोला। इस तरह के कई शोकेसों को देखते हुए छहों प्रतियोगी आगे बढ़ रहे थे। सबके मन में यह सवाल घूम रहा था कि यहां आखिर कौन सा रियलिटी शो होगा। नाई नाई कितने बाल, हुजूर आपके सामने ही है, राज को यही कहावत याद आई। थोड़ी देर बाद वो एक दूसरे कमरे में पहुंचे जहां एक बहुत बड़ा शोकेस लगा हुआ था। तो साहिबान, आप तैयार हो जाइए उस नायाब नजारे के लिए जो आपने अब तक नहीं देखा होगा, शेख बोला और उसने बड़े शोकेस का पर्दा खोला। उस शोकेस को देखते ही रिया बुरी तरह चीखने लगी। तारा भी भय से थरथर कांप रही थी। दूसरे लोगों का भी भय से बुरा हाल था। उनकी यह हालत देखकर शेख और उसके मेहमान ठहाका लगाकर हंसने लगे, क्योंकि उस शोकेस में 10 इंसानों की लाशें भूसा भरकर खड़ी की हुई थी। जिनका बड़ी बेदर्दी से शिकार किया गया था। एक काले आदमी की छाती में तीर घोंपा हुआ था, जिसे जस का तस रखा गया था। किसी की गर्दन तलवार से काटी गई थी, जिसके टांके साफ दिख रहे थे। कई लड़कियों की भी लाशें वहां संरक्षित थी। अब्दुल ने एक भद्दी सी गाली दी और शेख पर झपट पड़ा। 6.5 फुट के शेख ने बड़े आराम से बाएं हाथ के एक झापड़ से अब्दुल को काफी दूर फेंक दिया और अरबी में कुछ बोला। अचानक कमरे में अनेक कमांडोज आ पहुंचे और उन्होंने इन छहों को दबोच लिया। इन लोगों ने थोड़ा बहुत प्रतिशोध करने की कोशिश की, पर असफल रहे। शेख के इशारे पर उन्हें फिर मुख्य हॉल में ले जाया गया। तो मेरे अजीज मेहमानों, हम लोग जंगली जानवरों का शिकार करके बोर हो चुके हैं। जानवर तो आखिर जानवर हैं, वो हमारी अकल का मुकाबला नहीं कर सकते। उन्हें मारने में अब मजा नहीं आता। तो पिछले 2 सालों से हमने अलग अलग तरह के रोमांच की तलाश शुरू की है। हम इंसानों को चुनते हैं जो हर तरह से हमारे बराबर हैं। यहां जो खेल आज शाम को शुरू होगा वो खूनी खेल है, लेकिन उसमें आप सभी को बराबर का मौका मिलेगा। आप लोगों को हथियार, पानी, रस्सी, भोजन सब कुछ दिया जाएगा और भरपूर समय भी। आप लोग शाम को यहीं से रवाना हो जाएंगे। हम लोग आधी रात के बाद यहां से निकलेंगे। इस खूनी खेल में हम लोग आपको ढूंढ कर मारने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को खुद को बचाना है। इस कोशिश में आप हमें भी मार सकते हैं, आखिर जानवर भी तो यही करता है। और इंसान से बड़ा जानवर और कौन है। राज का मन कर रहा था कि वो अपने हाथों से इस राक्षस की टिक्का बूटी कर दे, लेकिन वो मजबूर था। बाकी प्रतियोगी भी सन्न थे। शेख बोला, आप लोग किसी भी दिशा में जाने के लिए आजाद हैं और किसी भी तिकड़म का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए, ये इलाका दलदली है और तरह तरह के भयानक जीव जंतुओं से भरा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि आप किसी और जानवर के हमले में मारे जाएं और हमारा मजा अधूरा रह जाए। कुत्ते कमीने, अबे तू इंसान नहीं बे दरिंदा है, नंदू धरती पर थूकता हुआ बोला। शेख ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो ऐसे बोला मानो कोई टीचर बच्चों को समझा रहा हो। यहां के आदिवासी मेरे पालतू कुत्ते हैं और उनके पास उनके अपने कुत्ते हैं जो लकड़बग्घों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। 1 साल पहले हमारा एक शिकार उनके चंगुल में फंस गया था, तो उसकी लाश भूसा भरने के लायक भी नहीं बची थी। तो आप लोग दुआ करना कि हमारे हाथों आसान मौत मिले। जंगली कुत्ते तो बहुत दर्दनाक मौत देते हैं। सभी का बदन भय से थरथराने लगा। तारा को तो भय से बेहोशी सी आने लगी। शेख ने एक उड़ती सी नजर उस पर डाली और बोला, मेरा जजीरा हर तरफ पानी से घिरा हुआ है। अगर आप एक बार तट पर पहुंच गए तो आपको जीता हुआ माना जाएगा और हिफाजत से आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन पिछले 2 सालों में ऐसा नहीं हुआ कि कोई पानी तक पहुंच सका हो। ज्यादातर लोग तो आधे रास्ते पर ही दम तोड़ चुके थे। सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जो काफी लंबा रास्ता तय कर गए थे, लेकिन हमारे आदिवासियों के तीरों से ना बच सके। 6 लोग गिड़गिड़ाकर शेख से अपने प्राणों की भीख मांगने लगे, लेकिन शेख पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो बोला, तुम लोग अपना वक्त जाया करने की बजाय जिंदगी बचाने के बारे में सोचो तो बेहतर होगा। फिर शेख ने एक ताली बजाई। इस बार कई आदिवासी 2 खतरनाक रॉटवाइलर कुत्ते लेकर भीतर दाखिल हुए, जिन्होंने आकर सभी प्रतियोगियों को सूंघना शुरू कर दिया। सबकी भय से घिग्गी बंध गई। शेख हंसता हुआ बोला, डरिए मत, ये कुत्ते इंसानों से भी ज्यादा समझदार हैं। इन्हें पता है कि अभी इन्हें सिर्फ अपने शिकार को पहचानना है। अभी ये कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आधी रात के बाद जब इन्हें आपके पीछे छोड़ा जाएगा, तब दुआ कीजिएगा कि हमसे पहले आपसे ना मिले। अब आप लोग जाइए, एक रोमांचकारी खेल की तैयारी कीजिए। शाम 6 बजे हम आपसे यहीं मिलेंगे। इतना कहकर शेख ने मुंह फेर कर एक सिगार सुलगा लिया। सब चीखते चिल्लाते और रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन शेख और उसके मेहमानों पर कोई असर ना हुआ। सुरक्षाकर्मी ने घसीटते हुए इनके कॉटेज तक ले आए और भीतर धकेल कर दरवाजा बंद कर दिया। इन सभी को इस बार एक ही बड़े कॉटेज में बंद किया गया था। जिसे ये आपस में बातचीत करके अपनी रणनीति बना सकें। लेकिन इन बेचारों को ऐसा होश ही कहाँ था। वे सब बुरी तरह घबराए हुए थे और लड़कियां तो बाकायदा रो रही थीं। उसी दिन शाम को शेख अपने दोस्तों के साथ चाय की टेबल पर बैठा ठहाके लगा रहा था। जिंगारो बोला, अगर खतरनाक कुत्ते उनके पीछे छोड़ दिए गए तो पलक झपकते ही उन्हें पकड़ लेंगे और तिक्का बोटी कर देंगे। शेख बोला, कुत्ते नहीं छोड़े जाएंगे जिगारो, उन्हें सिर्फ डराने के लिए मैंने कहा था कि कुत्ते छोड़े जाएंगे। कुत्ते हमारे साथ रहेंगे जो ये बताते रहेंगे कि हमारे शिकार किस दिशा में है, बाकी हमें उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारना है। अगर उन्हें आसान मौत दी तो खेल का मजा ही क्या आएगा। सारे पिशाच ठहाका लगाने लगे। उधर छहों प्रतियोगियों ने हालात से समझौता कर लिया और जीवन मृत्यु के इस खेल में जान की बाजी लगाने को मजबूर हो गए। रो रो कर उनके पपोटे भले ही फूले हुए थे पर अब राज के जबड़े भिंचे हुए थे और उसकी आंखों में जिंदा रहने का संकल्प दिखाई पड़ रहा था। रिया और तारा एक दूसरे को बाहों में लिए सांत्वना दे रही थी जब एक बॉडी गार्ड ने आकर उन्हें घेर लिया और मुख्य भवन की ओर लेकर चला गया। मुख्य भवन के दरवाजे पर आदिवासियों का जमघट था जो खूब जोरों से नगाड़े पीट रहे थे और पास ही दो खूंखार कुत्ते बंधे हुए थे। उन कुत्तों ने ही प्रतियोगियों की हालत पतली कर दी। भीतर शेख और उसके मित्र बैठे इनकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। अब उनके चेहरे से हंसी गायब थी और उसकी जगह ऐसे भाव आ गए थे जो अपने शिकार को देखते वक्त हिंसक पशुओं के चेहरे पर आ जाते हैं। शेख बोला, आज की रात तुम्हारी आखिरी रात भी हो सकती है। अपने खुदा को याद कर लो। सभी ने नफरत से चेहरा घुमा लिया। शेख ने ताली बजाई तो अनेक बॉडीगार्ड कुछ सामान ले आए। ये 6 किटें थीं जो उन्हें दे दी गईं। हर किट में एक छोटा सा खंजर, पानी से भरा हुआ गैलन, माचिस, टॉर्च, रस्सी, नक्शा इत्यादि सामान था। शेख ने कहा, इन सामानों का तुम लोग जैसे चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। हमसे बचने के लिए तुम लोग जितना हाथ पांव मारोगे और कठिनाई उत्पन्न करोगे हमें उतना ही मजा आएगा। इंसान का शिकार करने में सबसे ज्यादा मजा इसी बात का तो है कि इंसान भी हमारी ही तरह सोचते हैं। शाम 6 बजे उन्हें जाने को कहा गया। शेख बोला, रात ठीक 12 बजे हाका शुरू होगा, तब तक तुम लोग जहां तक पहुंच सको देख लो। छहों लोग ऐसी हड़बड़ाहट में वहां से भागे मानो अभी उनके सिर पर आकाश टूटने वाला हो। उनके पास बचने के लिए 6 घंटे थे। लगभग 1 घंटे तक वे तेज चाल से जंगल में चलते रहे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। आसन्न मौत की आशंका ने उन्हें मौन कर दिया था। लगातार 1 घंटे चलते रहकर वो थोड़ा थक भी गए थे। अब 7 बज रहे थे और अंधेरा होने को था। एक विशाल पेड़ के नीचे साफ जगह देखकर राज ने सबको वहां बैठने को कहा। सब एक घेरा बनाकर बैठ गए और उन्होंने अपने पिट्ठू बैग उतार कर सामने रख लिए। राज बोला, हम लोगों को तेजी से चलने के लिए ये जरूरी है कि हमारे पास कम से कम वजन हो। अगर हम आज की रात बच गए तो पूरी जिंदगी बहुत कुछ खा सकेंगे और अगर आज मर गए तो ये खाना भी हमारे किसी काम नहीं आएगा। मेरा तो कहना है कि थोड़ा बहुत खाकर बाकी खाना यहीं फेंक दिया जाए जिससे हम हल्के होकर तेजी से आगे बढ़ सकें। सबने सहमति में सिर हिलाया और थोड़ा बहुत कुछ खा पीकर बाकी खाना दूर फेंक दिया। अब उनके बैग काफी हल्के हो गए थे। राज ने जंगल का नक्शा खोलकर सामने फैला दिया और एक जगह उंगली रखकर बोला, मेरे अनुमान से हम लोग अभी इस पॉइंट पर हैं। अब अच्छा होगा कि हम लोग यहां से 2-2 लोगों के 3 दल बना लें और 3 अलग रास्तों से समंदर की तरफ बढ़ें। इस तरह हम अपने दुश्मनों की परेशानी बढ़ा सकेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम जल्द से जल्द पानी तक पहुंचकर अपनी जान बचा सकें। लेकिन हमारे दुश्मन बहुत बेरहम और चालाक हैं। उन्होंने जानबूझकर हमें इतना वक्त दिया है कि जब हम केवल आधी ही दूरी तक पहुंच सकें, इसलिए हमें बचाव के कुछ और रास्ते ढूंढने होंगे। नंदू बोला, अरे तो आप ही बताओ ना हम क्या करें। मथाई बोला, अगर हम सिर्फ भागने का कोशिश करेगा तो पानी के पहले बहुत पहले हमको वो लोग ढूंढ के मार देगा। अब्दुल बोला, हाँ बात एकदम बराबर है, कुछ तो करना पड़ेगा। राज ने कहा, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमारे शिकारी खुद शिकार बन जाएं। रिया बोली, लेकिन लेकिन वो होगा कैसे राज? उनके पास तो खतरनाक हथियार, भयानक कुत्ते और दूसरी चीजें हैं, और हम लगभग खाली हाथ हैं। इस छोटे से चाकू से हम सिर्फ केले के तने को काट सकते हैं, छोटे मोटे जानवर को मार सकते हैं। राज बोला, हमें दुश्मन से ही हथियार छीनने होंगे और उनके खिलाफ ही उन्हें उपयोग करना होगा। हम लोग तीन दलों में जरूर बंट जाएंगे, लेकिन ज्यादा दूर नहीं होंगे। हम केवल इतनी दूरी पर रहेंगे जिससे वक्त पड़ने पर एक दूसरे की मदद को पहुंच सके। अगर रास्ते में कोई बढ़िया जगह नजर आए जहां उनसे मुकाबला किया जा सके, तो ऊपर धुआं उठाकर सिग्नल देंगे। ठीक है, सबने सहमति में सिर हिलाया। राज और रिया की जोड़ी तो पहले से ही बनी हुई थी। मथाई और अब्दुल एक साथ हो गए। नंदू ने तारा की जिम्मेदारी उठा ली। सब आपस में एक दूसरे से गले मिले और तेजी से तट की ओर रवाना हुए। अब अंधेरा घिरने को था। रात्रि चर जीवों की चहल पहल और आवाजें बढ़ने लगी थी। ये तीनों दल चौकन्नी नजरों से इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। तारा ने एक जगह चौंक कर पीछे देखा तो नंदू ने पूछा, क्या हुआ? तारा बोली, मेरे को लगा शिकारी आ गए। नंदू ने कहा, अरे अभी वो नहीं आएंगे तारा, वो आधी रात के बाद बड़े मकान से निकलेंगे, अभी सिर्फ आगे बढ़ने की चिंता करो यार। तारा ने सहमति में सिर हिलाया और आगे बढ़ने लगी। लगभग दो घंटे चलने के बाद अब्दुल और मथाई को एक समतल मैदान मिला जिसके चारों तरफ घनी झाड़ियां थीं और बगल में एक बरसाती नदी बह रही थी। अब्दुल बोला, सुन भाई, मेरा तो ख्याल ये है कि हमको यहीं रुककर उन सालों का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अगर हम भागते ही रहे तो थक जाएंगे और आसानी से वो लोग हमें मार देंगे। मथाई बोला, ठीक है, हम यहीं रुकते हैं और लोगों को भी यहीं बुलाते हैं, ये जगह आर पार के फैसले के लिए ठीक रहेगी। अब्दुल बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ गया और उसने फुनगी को आग लगा दी। गाढ़ा सफेद धुआं आसमान की तरफ बढ़ने लगा। उधर राज और रिया को एक घंटे बाद ही जंगल में एक जंगली भैंसा दिखा। रिया उसका आकार और भयानक सींगे देखकर बुरी तरह डर गई थी, लेकिन वो इन लोगों से बेपरवाह हरी घास चरता रहा तो ये तेजी से बिना आहट किए भाग गए। थोड़ी दूर चलने पर इन्हें जंगल में एक जगह धुएं से लकीर उठती नजर आई तो राज ने रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, लगता है हमारे साथियों को कोई दुरुस्त जगह मिल गई है, आओ उधर चलते हैं। लगभग आधे घंटे बाद रिया और राज वहां पहुंच गए जहां अब्दुल और मथाई थे, लेकिन नंदू और तारा का कोई अता पता नहीं था। दरअसल नंदू और तारा उन लोगों से आगे थे और पीछे उठ रहे धुएं पर उनका ध्यान ही नहीं गया। वे आगे ही बढ़ते चले गए और तब तक नहीं रुके जब उन्हें भयानक अंधेरे में चमकती हुई कई आंखें ना दिखने लगीं। तारा की नजर उन भयानक जीवों पर पड़ी जो लपलपाती हुई जीभों से उन्हें घूर रहे थे। ये शिकारी लकड़बग्घे थे। तारा भय से कांपने लगी और उसने नंदू की कमीज कसकर मुट्ठी में पकड़ ली। नंदू की भी हालत खराब हो रही थी। लकड़बग्घा एक डरपोक जीव होता है जो कभी साहसपूर्ण ढंग से आगे बढ़कर हमला नहीं करता। उसके जबड़े की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि एक झटके में वो भैंस की जांघ की हड्डी भी तोड़ सकता है, लेकिन वो पीछे से हमला करके शिकार को घायल करता है और शिकार के रक्तस्राव से अचेत हो जाने की प्रतीक्षा करता है। शिकार के बदन में जरा भी हरकत हो रही हो तो वो दूर रहना ही अपना कल्याण समझता है। नंदू और तारा ने अपने अपने चाकू निकालकर हाथ में ले लिए और एक दूसरे की पीठ से पीठ चिपकाकर लकड़बग्घों को धमकाने लगे। लकड़बग्घे दूर से ही जीभ लपलपाते हुए धीरे धीरे अपना शिकंजा कस रहे थे। उनके पेट की भूख ये शिकार देखकर भड़क उठी थी। अचानक एक लकड़बग्घा छलांग लगाकर नंदू पर टूट पड़ा। नंदू ने जोर से चिल्लाते हुए एक चाकू वाला हाथ घुमाया जिसने लकड़बग्घे की गर्दन पर घाव कर दिया, लेकिन तब तक उसने नंदू के बगल के मांस का एक बड़ा सा हिस्सा नोच लिया था। नंदू का बदन भयानक पीड़ा से ऐंठने लगा। वो संभल पाता कि तब तक दूसरे लकड़बग्घे ने उसकी जांघ पर दांत गड़ा दिए। हड्डी टूटने की जोरदार आवाज आई जिसने नंदू को जमीन पर गिरने को मजबूर कर दिया। लकड़बग्घा हड्डी टूटने की आवाज से खुद मानो चौंककर दूर भाग खड़ा हुआ और जीभ लपलपाता हुआ उनकी ओर देखने लगा। तारा तो वैसे भी आसान शिकार थी। पलक झपकते ही दोनों अपने ही खून में सने हुए भूमि पर पड़े थे। धीरे धीरे दोनों के बदन से रक्त बह रहा था और वे अचेतावस्था की ओर बढ़ रहे थे। उनके आसपास लकड़बग्घों का शिकंजा कसता जा रहा था। अचानक भूखे लकड़बग्घे उन पर टूट पड़े और उनकी दर्दनाक चीखों की आवाज जंगल में गूंजने लगी। क्या नंदू और तारा लकड़बग्घों के हमले में मारे गए या कोई ताकत उन्हें बचाने में सफल हो पाई? क्या हाल हुआ मथाई, अब्दुल, रिया और राज का? जानने के लिए सुनिए खूनी खेल का अगला भाग सिर्फ गाथा पर।